शान ने अपनी बात खत्म की और अपने कपड़े लेकर फ्रेश होने चला गया। आरवी को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने जो सुना वो सब सच था। मतलब सच में शान ने उसे अनुपमा जी की धमकी दी। वो अविश्वास भरी नजरों से उसे देखती ही रह गई। शान वहां से चला गया, पर आरवी अब भी वहीं खड़ी एकटक बाथरूम के बंद दरवाजे को देखते हुए शान की कही बातों के बारे में सोचती रही। कुछ देर बाद शान फ्रेश होकर वापस रूम में आया और आरवी के सामने आकर खड़ा हो गया। कहो, क्या फैसला है तुम्हारा? आरवी इतनी देर से उसकी कही बातों के बारे में सोच रही थी। उसने गंभीरता से कहा, आपको अपना फैसला बताने से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पूछो। आप जानते हैं कि मेरा एक्टिंग का बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी आप अपने प्ले में मुझे ही क्यों लेना चाहते हैं? आपको तो कोई भी एक्ट्रेस मिल जाएगी, फिर मुझे ही क्यों चुना आपने? आरवी का सवाल सुनकर शान ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, नाइस क्वेश्चन। तो तुम जानना चाहती हो कि मैंने तुम्हें ही क्यों चुना? उसका बहुत ही आसान और सीधा सा जवाब है। ये प्ले तुम्हारे बाप की बर्बादी का कारण बनेगा और मैं उनके ही खून के जरिए उन्हें बर्बाद करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारा इस प्ले में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और रही बात कि तुम्हें एक्टिंग नहीं आती, तो तुम्हारी तो रगों में धोखा और फरेब बहता है। प्यार का और अच्छाई का नाटक करके कैसे किसी की पीठ में छुरा घोंपा जाता है, ये टैलेंट तुम्हें तुम्हारे डैड से विरासत में मिला है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज़रा भी दिक्कत होगी एक्टिंग करने में। आखिर इतने दिनों से यही तो करती आ रही हो, तो मेरे हिसाब से तो तुमसे बेहतर कोई और इस रोल को कर ही नहीं सकता। तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया तो अब जल्दी से अपना फैसला बता दो, फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। आरवी बेचारी शान को देखती ही रह गई। कितनी आसानी से उसने उसके प्यार को नाटक का नाम दे दिया था। एक बार फिर अमरजीत ठाकुर की बेटी होने का नुकसान भुगत रही थी वो। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं थे। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है, आप जब कहेंगे और जहाँ कहेंगे मैं पहुँच जाऊँगी, एक्टिंग भी करूँगी, पर अगर मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतर सकी तो उसके लिए मैं नहीं आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि भले ही आपको लगता होगा कि मैंने आज तक जो किया सब नाटक था और मैंने ये अपने पिता से विरासत में पाया है, पर मैं जानती हूँ कि मैं जो अंदर हूँ वही बाहर हूँ, दिखावे से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, तो कल सुबह तैयार रहना, तुम्हें मेरे साथ ही जाना होगा। आरवी ने बिना किसी भाव के हामी भरी और मुड़कर वहां से जाने लगी। अभी वो कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि उसके कानों में शान की आवाज़ पड़ी, मेरे लिए डिनर रेडी करके आधे घंटे के अंदर वापस मेरे सामने हाजिर हो जाना। आरवी के कदम एक पल को रुके जरूर, पर उसने पलटकर शान को देखा तक नहीं और वहां से चली गई। शान ने उसके जाते ही गहरी सांस ली और ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। एग्जैक्ट आधे घंटे बाद हाथ में ट्रे थामे आरवी ने एक बार फिर कमरे में कदम रखा। उस वक्त शान सोफे पर बैठा अपने फोन में कुछ कर रहा था। आरवी ने ट्रे उसके सामने टेबल पर रख दिया और वापस जाने के लिए मुड़ गई। तभी शान ने पीछे से उसे टोक दिया, अब जा कहाँ रही हो, बैठकर मेरे साथ डिनर करो, याद तो होगा ही कि मैं अकेले खाना नहीं खाता। आरवी के आगे बढ़ते कदम रुक गए। वो यूं बार बार पीछे से टोकने और इतनी रात को उससे खाना बनवाने के लिए थोड़ा चिढ़ी हुई थी और शायद शान की कही बातों की वजह से उससे नाराज भी थी। आरवी शान की बात सुनकर उसके तरफ मुड़ गई, थोड़ा चिढ़ी हुई सी बोली, आपने मुझे बताया नहीं था कि आज आप घर आने वाले हैं और ना ही मुझे सपना आता है कि आज आप घर पधारने वाले हैं, तो मुझे आपका इंतज़ार करना है, इसलिए मैं डिनर कर चुकी हूँ, तो अब आपको अकेले ही खाना खाना होगा। वैसे भी जब घर नहीं आते थे तब भी तो अकेले ही खाना खाते होंगे ना, तो अब भी अकेले खा लीजिए। आरवी के बेरुखी भरी बातें सुनकर शान भौं सिकोड़ कर उसे घूरने लगा, अगर बकवास खत्म हो गई हो तो चुपचाप मेरे साथ बैठकर खाना खाओ, भूलो मत हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा, तो मेरा ख्याल रखना तुम्हारा फ़र्ज है। ओह, तो आज आप मुझे मेरा पत्नी धर्म याद दिला रहे हैं, चलिए मैं तो अपने इस फर्ज को भी निभा दूंगी, पर अगर कभी आपको फुर्सत मिले तो जरा सोचकर देखिएगा कि आपने अपना हस्बैंड होने का फर्ज कब निभाया है। आरवी ने एक बार फिर उसे आईना दिखा दिया और वहां से चली गई। शान ने गुस्से से ट्रे को उठाकर जमीन पर अटक दिया और बालकनी में चला गया। कुछ देर बाद आरवी अपनी प्लेट लेकर वहां वापस आई। रूम में फैले खाने को देखकर उसने बेबसी से अपना सर हिला दिया और प्लेट टेबल पर रखकर टूटे बर्तन के टुकड़ों और बिखरे खाने को उठाकर उस जगह को साफ करने लगी। कुछ देर बाद सब क्लीन करने के बाद वो फिर से नीचे गई और बेचारी फिर से खाना बनाकर वापस रूम में आई, पर शान तब भी रूम में नहीं था। उसने ट्रे टेबल पर रखा और बालकनी में चली आई। बालकनी में रेलिंग पकड़े खड़ा शान आसमान को देखते हुए सिगरेट के कश भर रहा था। जहां वो खड़ा था वहां नीचे फ्लोर पर चली हुई सिगरेट का ढेर लग चुका था। आरवी के भाव एकदम से सख्त हो गए। हालांकि वो कुछ हैरान भी हो गई थी, क्योंकि पहली बार उसने शान को सिगरेट पीते देखा था, जो उसे पसंद तो बिल्कुल भी नहीं आया था। शान ने एक बार फिर सिगरेट को अपने लबों से लगाया। इसके साथ ही उसके कानों में आरवी की बेरुखी भरी आवाज पड़ी, अगर सिगरेट फूकने पर भी पेट ना भरा हो और खाना खाने की इच्छा हो तो अंदर आ जाइए, वरना मैं चली जाऊंगी। फिर गुस्से में दोबारा सारा खाना जमीन को खिला दीजिएगा, क्योंकि बनाने में मेहनत तो लगती नहीं है। आरवी अपनी बात कहकर वहां से चली गई। बातों बातों में वो शान को ताना भी मार गई थी, जिसे शान बखूबी समझ गया था। पहले तो वो उसकी आवाज सुनकर चौंक गया, क्योंकि उसे तो लगा था कि वो चली गई है, पर उसके आगे की बात सुनकर वो समझ गया कि वो गई नहीं थी, उसने ही गलत समझ लिया था। वो हैरानी से आरवी को देखता ही रह गया था, और आरवी उसको अच्छे से सुनाने के बाद घूरते हुए वहां से चली गई थी। शान ने अपनी उंगली के बीच फंसी सिगरेट को बुझाकर फ्लोर पर फेंक दिया और रूम में चला आया, जहां सोफे पर एक तरफ आरवी पहले से ही बैठी उसका इंतजार कर रही थी। शान ने एक नजर उसे देखा, फिर जाकर सोफे पर महाराजाओं की तरह पसर कर बैठ गया। आरवी ने उसे देखा तक नहीं, पर वो जानती थी कि शान वहां आ चुका है, तो उसने मुंह फुलाए खाना खाना शुरू कर दिया। कितने वक्त बाद दोनों ऐसे साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। हालांकि आज दोनों के बीच काफी दूरी आ चुकी थी, कोई बात भी नहीं हो रही थी, फिर भी शान के चेहरे पर अलग ही सुकून नजर आ रहा था। खाते हुए रह रहकर उसकी नजरें आरवी की तरफ उठ रही थी, जो सर झुकाए खामोशी से अपना खाना खा रही थी। शायद उसे भी एहसास था कि शान उसे ही देख रहा है, इसलिए वो निगाहें नहीं उठा रही थी, पर इस पल में मौजूद सुकून को महसूस कर रही थी। यूं ही खामोशी के बीच दोनों ने डिनर खत्म किया। उसके बाद आरवी खाली बर्तनों को समेटकर ट्रे में रखने लगी, और फिर जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, शान ने एक बार फिर पीछे से कहा, जल्दी से वापस यहाँ आ जाना, कहीं और जाने की सोचना भी मत। इस बार आरवी की आंखें हैरानी से फैल गई उसकी बात सुनकर, पर उसने जल्दी ही खुद को संभाला और उसकी तरफ मुड़ते हुए सहजता से बोली, अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं, अंशु वहाँ अकेली है, इसलिए मैं उसके साथ ही रहूंगी। ठीक है, आज छोड़ रहा हूँ, पर याद रहे कि कल से मुझे मेरी वाइफ मेरे रूम में चाहिए, और अंशु के साथ अब से छाया सोएगी। जैसे पहले वो अंशु का ख्याल रखती, अब भी वही रखेगी। तुम्हारा ज्यादा ध्यान मुझ पर और अपने काम पर होना चाहिए।
शान की बात सुनकर आरवी का माथा ठनक गया। उसने हल्के गुस्से में कहा, वो छाया की नहीं मेरी बेटी है, इसीलिए उसका ध्यान छाया नहीं मैं रखूंगी। रही बात आप पर ध्यान देने की, तो अगर आप घर पर रहे तो आपको भी शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, और अगर आप यहाँ सोने की बात कर रहे हैं तो पहले जैसे मैं, अंशु और आप यहाँ सो सकते हैं, मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मैं अंशु को वहाँ छाया के साथ छोड़कर यहाँ नहीं रुक सकती। शान ने शांति से उसकी बात सुनी, फिर उठकर आरवी के सामने आकर खड़ा हो गया। सबसे पहली बात, अंशु तुम्हारी नहीं मेरी बेटी है, इसीलिए उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं, उसे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगा। अब से तुम्हें रिहर्सल के लिए जाना होगा। जब तक प्ले हो नहीं जाता, तुम सुबह जाओगी और शाम को आओगी, तो अंशु को छाया के साथ ही रहना होगा। अब आती है रात को अंशु के यहाँ सोने की बात, तो वो अपने रूम में सोएगी, क्योंकि मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ रहूंगा, जिसमें मुझे किसी भी की मौजूदगी मंजूर नहीं होगी। तुम मेरी वाइफ हो, पहले तुम्हारा रिश्ता मुझसे जुड़ा है, इसलिए तुम पर पहला हक भी मेरा है। अंशु के प्रति तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां जरूर हैं, पर उससे ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए मेरी खुशी का ध्यान रखना है। आई होप कि तुम मेरी बात का मतलब समझ गई होगी। आरवी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। हालांकि जब शान ने अंशु को अपनी बेटी कहा था तो उसको बुरा जरूर लगा था, पर उसने अपना दुख जाहिर नहीं होने दिया। शान ने अपनी बात पूरी की तो आरवी ने बस सहमति में सर हिला दिया और वहां से चली गई। शान भावहीन सा बिस्तर पर आकर लेट गया। अपने बांह को फोल्ड करके उसने अपने सर के पीछे लगा लिया और सीलिंग को घूरते हुए सुबह की कही आरवी की बातों के बारे में सोचने लगा, जिसने उसे झकझोर कर रख दिया था। कहीं न कहीं वो जिस गिल्ट से भागने और उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था, आरवी हर बार अपनी बातों से उसे याद दिला देती थी, जो शान के मन को बेचैन कर जाता था। दिमाग जो ठाकुर खानदान से नफरत करता था, उसे अपनी की हरकत पर जरा भी शर्मिंदगी या पछतावा नहीं था, पर दिल जिसमें आरवी के लिए मोहब्बत बसी थी, वो आरवी से निगाहें तक मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बेचैन था वो, दिल और दिमाग के बीच उलझा हुआ था, न आरवी से माफी मांग पा रहा था और न ही अपनी की हरकत को भुलाकर आगे बढ़ता रहा था। टू बी कंटिन्यूड।